मेरे अपने प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 24 नवंबर 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले दो दिनों से हम जिस विषय पर बात करते आ रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आज उसे और आगे बात की जाए। उस पर बात करना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी बात अधूरी सी रह गई है, मन नहीं मान रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि आज की मेरी इस बात को आप किस तरीके से स्वीकार करेंगे, लेकिन यूं कह लीजिए कि ये मेरी अपने ही मन की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और आज के इस टॉपिक को आप अगर या कोई नाम देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अपने सच को कैसे दुरुस्त करें। यह भी नजरिए से ही जुड़ी हुई बात है, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यह बात मेरे मन में इसलिए आई कि कल मैंने जिस सच की बात कही थी कि सबका अपना अपना सच होता है, और जरूरी नहीं कि सबका अपना अपना जो सच है वही सच हो, यानी कि सच कुछ और होगा, लेकिन उसी सच को लोग जब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती जा रही है, और वह सच वास्तव में सच न रह करके हर आदमी का अपना अपना सच बन जाता है। मित्रों, मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक फिल्म अगर कहीं से देखने को मिले तो ये फिल्म जापानी फिल्म है, इसके निदेशक अकीरा कुरोसावा हैं, और इसका नाम है रोशोमन गेट। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को या लोगों को यह फिल्म देखने के लिए सजेस्ट करता हूं। अद्भुत फिल्म है और दुनिया की जो 10 महानतम क्लासिक फिल्में मानी जाती हैं उनमें से रोशोमन गेट एक फिल्म है। इस फिल्म की कहानी कुल इतनी है कि खूब बारिश हो रही है, जंगल में कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए गए हुए हैं। जब बहुत बारिश होने लगी तो एक छाया के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। खूब तगड़ी ठंड है और वहां वो आग तापते हैं और एक किस्से के बारे में बात करते हैं। किस्सा यह होता कि उससे ठीक पहले एक नौजवान अपनी पत्नी की अपना विवाह करके अपनी पत्नी को बैलगाड़ी से अपने गांव ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या हो जाती है। बस, और इन चारों ने इस घटना को देखा है, हत्या होती हुई घटना को देखा है, राइट? और चारों उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं कि हत्या कैसे हुई। और मजेदार बात है कि इन चारों की जो कहानियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। और फिर फिल्म के आखिरी में, देखिए अभी एक फिल्म ही है, फिल्म के आखिरी में फिर जिसकी हत्या हुई है उसकी आत्मा प्रकट होती है और फिर वो बताती है कि मेरी हत्या कैसे हुई। वो आत्मा बताती है और पता लगता है कि वह जो हत्या का कारण बता रही है, वह आत्मा अपनी ही हत्या का जो कारण बता रही है, वह इन चारों के बताए हुए कारणों से बिल्कुल अलग है, तरीके से बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है। यानी कि उन चारों का अपना सच था और सच का अपना सच था। इस फिल्म को देखिए, मुझे लगता है कि यह फिल्म हिंदी में भी होगी, इंग्लिश टाइटल में तो यह अवेलेबल है। और सच यह है कि यह फिल्म जिंदगी के बारे में ना हमारे दृष्टिकोण को बहुत ही व्यापक बना देता है, बहुत ही व्यापक बना देता है, क्योंकि फिर हम दूसरों के लिए अपने मन में जगह बनाए रखते हैं कि नहीं, मुझे जो बताया गया है वही सच नहीं है। और जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है, दूसरों के लिए जब जगह बच जाती है, तो सच पूछे तो वही हमारे अपने लिए जगह होती है। अदरवाइज तो फिर हमारे अपने लिए जगह बचती ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी जगह थी हमारे दिमाग में उस सबको तो दूसरों ने भर दिया, और उन दूसरों के भरे को ही हम अब अपनी चीज मान रहे हैं जबकि वह हमारी चीज है नहीं। मित्रों, जब मैं सुबह घूम रहा था तो मेरे दिमाग में अचानक स्ट्राइक किया कि मैंने कल जो आप सबसे सच की बात कही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनने के बाद आप सब दूसरों पर डाउट ही करने लगे कि नहीं नहीं वो जो कह रहा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उसका अपना सच है। यानी कि पता लगा कि हम एक बड़े अविश्वासी किस्म के व्यक्ति बन गए, सब पर डाउट कर रहे हैं, किसी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब तो व्यावहारिक जीवन में बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो हम अपने घर के लोगों पर भी विश्वास करना बंद कर देंगे, पड़ोसी सब। अगर आप कल्पना करके देखिए कि विश्वास ही अगर हम खो देंगे तो फिर ये जीवन चलेगा कैसे, क्योंकि जीवन तो विश्वास के आधार पर ही चल रहा है, हमारा लेन देन, बात व्यवहार, संबंध, नौकरी पेशा, सब कुछ विश्वास के ऊपर है, तो हम क्या करें। मित्रों, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे थोड़ी सी और बात करनी चाहिए। देखिए, मैंने जो कहा कि सबका अपना अपना सच है, उसका मतलब यह है कि जो वो मान रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो बता रहा है, वह उसमें सच है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। और सच पूछे तो वो जान बूझ कर भी झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट वह सच बोल नहीं पा रहा है, बावजूद इसके कि उसमें से आप सच पकड़ सकते हैं और आपके काम का सच मिल भी जाएगा, आपके काम का सच मिल जाएगा, लेकिन उसे आप पूरी तरह से ना माने। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस पर डाउट करें, अविश्वास करें। नहीं फ्रेंड्स, मैं जो ये बात कह रहा हूं, ये एक फिलोसफिकल तरीके से मैं बात कर रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए यह बात कह रहा हूं, मैं दर्शन शास्त्र के आधार पर यह बात कह रहा हूं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के आधार पर यह बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण क्या है? बेसिकली दृष्टिकोण हमारी अपनी जिंदगी को जीने का एक दर्शन शास्त्र है, एक फिलॉसफी है, वही है दृष्टिकोण। हम सबके दिमाग में अपनी जिंदगी को जीने का एक तरीका बना हुआ है, उसका एक आधार बना हुआ है, उसका एक रास्ता बना हुआ है। और सच पूछे तो हम किसी भी चीज के बारे में जो फैसला लेते हैं वह उसी आधार पर फैसला लेते हैं। जैसे किसी की जिंदगी का आधार यही है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, तो वह जितने भी फैसले लेगा उसके लिए सारी चीजों के फैसले इसी से निर्धारित होंगे, सारी चीजों के। पैसा है तो उड़ाओ, संबंध है तो उनसे मौज मस्ती करो, दूसरे व्यक्ति से अगर कोई संबंध है, कोई बातचीत हो रही तो देखो इससे कितना फायदा उठाया जा सकता है, कर्जा लेकर के मौज उड़ाओ, तो उसके सारे निर्णय इसी फिलॉसफी के केंद्र में होंगे। अगर कोई वास्तव में त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहता है, कोई इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना चाहता है, कोई क्रिएटिव लाइफ जीना चाहता है, तो आप देखिए फिर उसके जीवन के निर्णय इसी तरीके के होंगे। मौज मस्ती वाला व्यक्ति अगर सोचेगा कि वो कहां घूमने जाए तो वो आइलैंड्स पर जाएगा जहां खूब मौज मस्ती होती है, राइट। लेकिन एक क्रिएटिव व्यक्ति सोचेगा तो कहां जाएगा, वो जाएगा पहाड़ों पर या शांत जगह पर जहां उसे बड़े अच्छे अच्छे दृश्य मिल सके, उसकी रचनात्मकता जागृत हो सके। तो हम जो भी निर्णय लेते हैं अपनी फिलॉसफी पर ही आधारित निर्णय लेते हैं। तो मैं जिस दृष्टिकोण की बात कह रहा हूं वो मूलतः फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, इंडिविजुअल नहीं है कि हर एक पर हम शक करने लगे। और जब हम एक तरीके से सत्य के चरित्र को समझ लेते हैं कि नहीं, सत्य तो बहुत प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता, यह बात अलग है कि समाज का एक सत्य होता है जिसे हम एक सार्वजनिक सत्य कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की, वो तो सच है, लेकिन उस सच को जानना, वहां तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, हम केवल वहां तक पहुंचने की कोशिश ही करते हैं। तो मित्रों, जब हम इस भाव को समझ लेते हैं तो होता क्या है, उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि हमारे जो ज्ञान का दायरा है वो फैलता चला जाता है, बहुत हम विस्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे गांधी जी ने कहा कि मेरी खिड़कियां खुली रखने दो और मैं चाहता हूं कि उनमें से बाहर की हवाएं आए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो हवाएं इतनी तेजी के साथ आए कि मेरे अपने पैर उखड़ जाए, है नहीं? मैंने इसे थोड़े से अपने शब्दों में ढाल दिया, एग्जैक्ट गांधी जी के शब्द यही नहीं थे लेकिन भाव बिल्कुल यही थे। पैर उखड़ जाए का मतलब है कि मेरी जो अपनी संस्कृति है, मेरी जो अपनी सोच है वो सब बनी रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाहर की चीजें भी लगातार मुझे पता लगती रहें। मैं अपने दरवाजे बंद नहीं करना चाहता, मैं अपनी खिड़कियां बंद नहीं करना चाहता, मैं उन्हें खुली रखना चाहता हूं। तो जब हम सत्य के इस स्वरूप को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली वो सारी की सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़ाधड़ अपने आप खुलने लगते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, और इसके बारे में मैं इससे पहले भी बातें कर चुका हूं, और वो है तर्क, लॉजिक। हो सकता है मित्रों की लॉजिक 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 सुनते सुनते आप सब थोड़ा सा मुझ पर झुंझलाने भी लगे हों, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब मेरी सोच तो यही है, आपके झुंझलाने को मैं स्वीकार करता हूं, मैं उसे पूरा सम्मान देता हूं, लेकिन मेरा अपना जो तर्क है, मेरे अपने जो विचार हैं, वो सच पूछिए तो इसी पर आधारित है। तर्क भी तर्क पर आधारित है, इमोशंस है नो डाउट, क्योंकि मैं इमोशंस को भी तर्क युक्त मानता हूं, यानी कि जो भी जहां भी तर्क नहीं है वहां इमोशन है, नॉट एट ऑल। इमोशंस के भी अपने तर्क होते हैं, इमोशंस के भी अपने यथार्थ होते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि इमोशंस का अपना तर्क नहीं होता? वो तो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी धरोहर है, वो हम सबका एक अमूल्य खजाना है, ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि जब उस इमोशंस पर से हम तर्क की लगाम को हटा देते हैं तो वही इमोशंस हमें बहाकर पता नहीं कहां ले जाकर के पटक देता है। इसलिए मैंने कहा कि इमोशंस के भी अपने तर्क होते हैं। तर्क कोई शुष्क चीज नहीं है, तर्क बेसिकली सत्य का पता लगाने का एक आधार है, माध्यम है। जैसे सोने की परख आप एक कसौटी पर करते हैं, ठीक इसी तरह से सत्य की जो परख है वो तर्क से थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत क्या यूं कह लीजिए कि काफी कुछ हो जाती है। तो कुल मिलाकर यह दोस्तों कि जब हम तर्क का जीवन जीने लगते हैं तब फिर हम सत्य की परख करने में पारंगत होते चले जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि तब तो हमें एक एक सत्य को परखने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, नॉट एट ऑल। आप सुनते हैं और जब पारंगत हो जाते हैं तो आप सत्य को पकड़ लेते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं, तुरंत समझ में आता है। दिमाग इतने फास्ट तरीके से काम करता है, इतनी तेज गति से चलता है कि वो तर्क ला ला करके और उन पर फटाफट फटाफट कसौटियों पर कस कस करके रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, मॉडिफाइड करता है, जो भी करे वो। आप बोल रहे हैं, सुन रहा है, उसे वो मान भी रहा है और अपने तरीके से उसे परिवर्तित करके उसमें से सत्य को समझ रहा है कि नहीं, ये बोल तो ये रहे हैं लेकिन इसमें सच ये है, उसी में से वो सच निकालेगा। लेकिन इतना ही सच है, ये जो बाद का जो बोला ना, या इस तरह से जो मिलावट करके ये बोल रहे हैं, वो सच नहीं है। तो मित्रों फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जब ये क्षमता आ जाती है तो तटस्थता का भाव अपने आप पैदा होने लगता है। देखिए, तटस्थता का मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप खड़े हैं, जो मैंने तट पर स्थित की बात कही। तटस्थता का मतलब है कि हमने अपने दिमाग को दूसरों के विचारों से प्रदूषित होने नहीं दिया है, दूसरों को हमने सुना है, दूसरों को समझा है, इसके बाद उसे परखा भी है। ये इससे मैं अंत करना चाहूंगा, उसे हमने परखा भी है, बिना जांचे परखे हमने उसे स्वीकार नहीं कर लिया। और जांचने परखने के बाद जो 24 कैरेट का सोना मिला वो हमने स्वीकार कर लिया और बाकी चीजें हमने निकाल करके बाहर फेंक दी। कोई बात नहीं, दूसरी जगह से मिलेगा या हम लेकर के आएंगे। हम आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको ज्यों कहते हो 100% एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मित्रों धीरे 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 हम तटस्थता के करीब पहुंचने लगते हैं। तो दोस्तों आज अब मैं इस अपने विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।